बुधवार 3 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के जवान आने वाले हफ्तों में पोलैंड भेजे जाएंगे, जहां वो रशिया के साथ चल रहे युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिक नॉर्वे के नेतृत्व वाले एक ऑपरेशन में शामिल होंगे, जिसमें उन्हें बेसिक इन्फेंट्री टैक्टिक्स, लीडरशिप और मिलिट्री स्किल्स सिखाई जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया 2023 से यूनाइटेड किंगडम आधारित एक ऑपरेशन के जरिए इसी तरह का समर्थन दे रहा है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि यूक्रेन के पास ट्रेनिंग देना ज्यादा सही है। एक डिफेंस समिट में रिचर्ड माल्स ने कहा कि यूक्रेन को समर्थन देना रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप पनडुब्बी समझौते में हाल ही में हुए बदलावों का बचाव किया है। जबेड ह्यूजिक ने कहा कि सरकार को इस पर फिर से बातचीत करनी चाहिए। लेबर पार्टी के बैकबेंचर ने कहा कि पार्टी के अंदर इस समझौते को लेकर कुछ असंतोष है और उन्होंने सरकार से अपनी प्रतिबद्धता पर फिर से विचार करने की अपील की है। रक्षा समझौते को लेकर चिंताएं तब और बढ़ गईं जब ये घोषणा हुई कि ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका से केवल सेकेंड हैंड न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियां ही खरीदेगा। हालांकि चैनल 9 के टुडे शो में बातचीत के दौरान पेनी वोंग ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह के वोट की संभावना को खारिज कर दिया। पूर्व कैनबरा लिबरल्स नेता लियान कैसले ने पार्टी से पूरी तरह इस्तीफा दे दिया है। यह कदम उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पद छोड़ने के 7 महीने बाद उठाया है। यरबी के मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली लियान कैसले ने कहा कि पार्टी में टॉक्सिक कल्चर है और अब वो इसका हिस्सा नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि अब वो इंडिपेंडेंट के रूप में काम करेंगी और उन्होंने 18 महीनों तक बुलिंग, इंटिमिडेशन, झूठ और धमकियों का सामना करने का आरोप लगाया है। लिबरल नेता मार्क पैटर्न ने टॉक्सिक कल्चर के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन कहा है कि संगठन ने बुलिंग से जुड़ी चिंताओं को संबोधित किया है। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स से जुड़े स्कैम्बलिंग स्कैम्स में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। टेलस्ट्रा के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डैरन पॉली ने कहा कि तेजी से बढ़ने वाले ऑनलाइन खतरों में स्कैम गैम्बलिंग यानी अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट से जुड़े स्कैम्स भी एक हैं, जहां लोग पहले से ही हर साल लगभग $2.2 अरब अलग अलग तरह की फाइनेंशियल ठगी में खो देते हैं। ये स्कैम्स अक्सर आसान जीत का लालच देते हैं और फिर लोगों को पे आई डी जैसे माध्यमों से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं, जिससे पीड़ितों को आर्थिक नुकसान के साथ उनके बैंकिंग डिटेल्स और पहचान दस्तावेजों भी खतरा होता है। टेलस्ट्रा ने कहा कि उसने इस साल लगभग 1800 गैम्बलिंग से जुड़े डोमेन्स ब्लॉक किए हैं, जिससे 2 मिलियन से अधिक संभावित विजिट्स रोकी गई हैं। ईरान और अमेरिका दोनों ने मिसाइल हमले किए हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर गल्फ रीजन में हमले करने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि उसने बहरीन में स्थित US 5th फ्लीट के मुख्यालय को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। वहीं अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने ईरान के खश्म आइलैंड पर सेल्फ डिफेंस के तहत हमले किए, जो तेहरान की ओर से किए गए कथित हमलों के जवाब में थे। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। और अब खबर भारत से। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत डिपके 6 जून को दिल्ली पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वो जनता के समर्थन पर भरोसा कर रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया है और कहा है कि उन्हें ये संगठन देशभक्त और देश सुधार के लिए त्याग करने वाला लगा। सोनम वांगचुक ने यह भी बताया कि पहले उन्होंने इस समूह पर सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में अभिजीत डिपके से बातचीत और समर्थन से जुड़े आंकड़े देखने के बाद उन्हें भरोसा हुआ कि इसका कोई छिपा उद्देश्य नहीं है। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, TV चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।